ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप जो सदा सुख देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान खजाना देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूलो मत, श्रीमत पर सदा चलते रहो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जो सदा सुख देते हैं, बाप सदा सुख देने वाला है, बाप का कर्तव्य ही है बच्चों को सदा सुख देना, सदा के लिए सुखी बनाना, यह बाप का कर्तव्य है। इसे गुण समझो या कर्तव्य समझो, बाप हमेशा सुख देता रहता है। जो भी मिले बाप को, बाप उसे सुख देता है। तो जो ऐसा बाप है सुख देने वाला, उसे सदा याद रखना है। कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, अपने को आत्मा समझकर सुख देने वाले बाप को याद करना है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सहज बात है जो बाबा बताते हैं। बाप की याद में ही सारा सुख है। बाप की याद जैसे विज्ञान है, माना बहुत गहराई है उसके अंदर। तुम बस याद करो अपने को आत्मा समझकर, सिमर सिमर सुख पाओ, ऐसे बात है। तो बच्चे बस याद करना, यह संगम युग मिला है याद के लिए। ऐसे बाप को सदा याद करना चाहिए। संसार को, बाहरी बातों को बहुत याद किया, अभी ऐसे बाप को याद करना चाहिए जो सदा सुख देता है, बहुत काल का सुख देता है, दुख से छुड़ाता है। और ऐसे विकर्म जो बच्चों से घटित हुए हैं, जिनके दुख बहुत बड़े हैं, उन्हें बाप समाप्त कर देता है। जो बच्चे बाप को याद करते हैं आत्मा समझकर, बच्चे याद करो, रोज पढ़ाते हैं, रोज बच्चों को ज्ञान देते हैं, ज्ञान देने के लिए अपना धाम छोड़कर नीचे आए हैं, ताकि बच्चों को सजग कर सकें कि बच्चे जागो, यह संगम का समय है, अब घर जाना है, मैं लेने के लिए आया हूं। अभी ड्रामा पूरा हुआ, अभी तुम मेरी मत पर चलो, श्रीमत पर चलो, बाकी सबकी मतों को भूल जाओ। बाकी सभी की मतों ने तुम्हें गिरा दिया, जितनी मतें ली उतने गिर गए। बाबा कहते, अभी मेरी मत लो और ऊंच चढ़ो, मैं ऊंच चढ़ाने के लिए आया हूं, ऊंच उठाने के लिए आया हूं। तो जो रोज पढ़ाते हैं, बाबा कहते समझ है, बच्चे ज्ञान को ध्यान से समझो, पढ़ो, धारण करो। ज्ञान खजाना देते हैं, ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है, संगम युग का ज्ञान। बाकी ज्ञान तो इस खजाने से आटे में नमक मिसल निकला हुआ खजाना है, रहा हुआ खजाना है। पर यह जो ज्ञान जो बाप दे रहा है बच्चों के सम्मुख बैठकर, यह खजाना सबसे बड़ा खजाना है। बच्चों को यह शब्द लगेंगे जो स्थिति में नहीं होंगे, ये अक्षर लगेंगे, यह वाक्य लगेंगे, पर बच्चे यह वाक्य नहीं है, अक्षर शब्द नहीं है, यह खजाना है। तुम इसे लेते चलो, खजाना इकट्ठा करते चलो। जैसे कोई खजाना इकट्ठा करने स्थूल रूप में कहीं जाते हैं तो दिन रात नहीं देखते, जितना इकट्ठा हो सके इकट्ठा करते हैं। वैसे ही बाबा कहते यह ज्ञान खजाना है, जितनी मुरलियाँ पढ़ सकते हो पढ़ो, उतना खजाना जमा हो रहा है, बस यह दिखेगा नहीं। वह खजाना गोनियों में भरेंगे, ऊँटों पर लादेंगे, हाथियों पर चढ़ाएंगे, घोड़ों पर चढ़ाएंगे, वह दिखेगा, यह नहीं दिखेगा, क्योंकि यह अंदरूनी खजाना है। यह खजाना यहाँ जमा करेंगे और यही खजाना सतयुग में परिवर्तन हो जाएगा रत्नों में। यहाँ ज्ञान रत्न जितना इकट्ठा करेंगे वहाँ उतने रत्न मिलेंगे स्थूल रूप में। पर कोई बच्चे कहे कि इनको इतने रत्न कहाँ से मिले, यह इतने बड़े साहूकार कैसे बने, उसका कारण संगम पर है। संगम पर उन्होंने उतनी मुरलियाँ इकट्ठा की, उतना ज्ञान इकट्ठा किया, इसलिए सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग महाराजा राजा बड़े साहूकार बने। यह परिणाम संगम का है, इसलिए ज्ञान खजाना देते हैं। ऐसे बाप को तुम भूलो मत, ऐसे बाप को सदा याद रखो। जो देने आया है बस, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो बस देने के लिए आया है इस धरा पर, बच्चों को भरपूर करने के लिए आया है। बच्चे भरपूर होते जाए, किसी का भाग्य है डायरेक्ट भरपूर होने का, किसी का भाग्य है, सौभाग्य है इनडायरेक्ट भरपूर होने का। बस बच्चे भरपूर हो जाए। बाबा कहते मैं बांट रहा हूं, तुम मुझसे लो या मैं जिन बच्चों को दे रहा हूं उन बच्चों के द्वारा लो, बस सुखी हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस आ जाए, बस मेरा काम हो गया। तो बाबा कहते सदा याद रखना ऐसे बाप को, श्रीमत पर सदा चलते रहो। ईश्वरीय मत है, गॉड की मत है, अल्लाह की मत है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर सदा चलते रहो। श्री को समझेंगे तो श्रीमत समझना आसान होगा। बस श्री श्री को समझ जाइए तो श्री की मत पर तुम सदा चलोगे, कभी गिरेगी नहीं, कभी तुम भूलेंगे नहीं श्रीमत को, क्योंकि तुम जानते हो बात करने वाला कौन है, श्रीमत देने वाला कौन है, तुम भूलेंगे नहीं कभी। बाबा कहते हैं ये कल्पना से बाहर है कि बाप साकार में बच्चों के संग बैठा है, बच्चों से ज्ञान की बातें कर रहा है। ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, न किसी वेद पुराण में, न किसी कथा कहानी में है, कहीं नहीं मिलेगा, ये गुप्त है। और वो बच्चे भाग्यशाली हैं जिनके सम्मुख बाप बात करता है, बैठा है। बाबा कहते यही बड़ा भाग्य है, बाकी क्या चाहिए। तुम्हारा भक्ति का वचन था कि जब तुम आओगे हम सब छोड़कर तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे पास बैठेंगे, तुम्हें संग खाएंगे, तुम्हें संग बैठेंगे, तुम्हें संग चलेंगे। अभी मैंने मेरा वचन निभाया है, तुम तुम्हारा वचन निभाओ। जबरदस्ती नहीं है, हर्जा नहीं, तोड़ोगे तो भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारे भाग्य के लिए, दुनिया के भाग्य के लिए तुम तुम्हारा वचन निभाओ, अच्छा लगे तुम। वरना फिक्र नहीं करना कि भक्ति में वचन दिया है और बाप नाराज होगा। नहीं, बाप कभी नाराज नहीं होता। हाँ, अगर तुमने निभाया तो राजी जरूर रहूंगा मैं, तुम पर राजी रहूंगा, नाराज मैं कभी नहीं होता। मैं सिर्फ राजी रहता हूं या राजी नहीं रहता हूं, नाराज कभी नहीं होता। इसलिए बाबा कहते श्रीमत पर चलो। मैं आया हूं तो अभी साथ चलो, मिलके दुनिया बदलेंगे, विश्व परिवर्तन करेंगे, सुख की दुनिया लाएंगे। आदि में एक एक संत महंत को लेकर एक एक देश में एक एक काल में परिवर्तन किया, अंत में परिवर्तक बच्चों को लेकर एक साथ सारे दुनिया को बदलना है। इसलिए बाप दुनिया बदलने वाले बच्चों को ढूंढ रहा है, खोज रहा है दुनिया बदलने वाले बच्चे। देश या राज्य बदलने वाले नहीं, दुनिया बदलने वाले, क्योंकि अभी दुनिया बदलने का समय आया है। एक एक युग में देश राज्य काल बदलता गया, बहुत अच्छी बात, अभी दुनिया बदलने का समय है। तो बाप ढूंढ रहा है ऐसे बच्चों को, ऐसे बच्चों का संगठन इकट्ठा हो जाएगा, सारी धारणाओं में आ जाएंगे, श्रीमत पर पक्के चलेंगे, फिर बाप आज्ञा देगा अभी क्या करना है। इस संगठन से विश्व बदलेगा, ऐसे संगठन से। प्रश्न है, बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं? उत्तर है, कांटों के इस जंगल को बदल कर सुंदर फूलों का बगीचा बना देना, पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना, यह जादूगरी बाप की है, किसी मनुष्य की नहीं। बाप ही सबसे बड़ा सोशल वर्कर है जो पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। यह जादूगरी मनुष्य नहीं कर सकते क्योंकि मनुष्यों का पार्ट भी नहीं है। बच्चे किसी संत महंत को, महात्मा को, पुण्यात्मा को दोष नहीं देना कि तुम दुनिया नहीं बदल सकते, नहीं, उनका पार्ट ही नहीं है। वो जो कर रहे हैं बहुत श्रेष्ठ कर रहे हैं। कम से कम 4 बच्चों को 10 बच्चों को 400 बच्चों को अच्छे राह पर तो लेके जा रहे हैं, भटका तो नहीं रहे ना, तो उनका पार्ट नहीं है दुनिया बदलने का। तो उन्हें भी तुम श्रेष्ठ दृष्टि से देखना, बहुत श्रेष्ठ बच्चे हैं वो, जो बाप के लिए मददगार बने हैं। बाबा जैसे कहते हैं, सन्यासियों ने थमाया है इस सृष्टि को, उसमें वो बड़े पार्टधारी है, वो पूजनीय है उस रूप से, क्योंकि उन्होंने थमाया है। तुम बच्चे अभी सीख रहे हो कैसे थमाना है, पर उन्होंने थमाया है, तो बाबा कहते हैं मनुष्यों का पार्ट नहीं है, बाप का ही पार्ट है। इस काटो के जंगल को बदलकर सुंदर फूलों का बगीचा बना देना, यह बाप का पार्ट है। और बाप कर रहा है बच्चों को निमित्त बनाकर, बच्चों के द्वारा। बच्चे श्रीमत पर चलते रहे और कार्य करते रहे, कांटों के जंगल को बदलना आसान है, बस श्रीमत पर चलो। सुंदर फूलों का बगीचा लाना आसान है, बस श्रीमत पर चलो। तुम्हारे अंदर जितनी मत है, जब भी बच्चों से कोई मत निकले, कोई भी मत निकले, बच्चे बस एक बात का ध्यान रखें, चेक करें ये बाप की मत है या नहीं है, किसकी है वो छोड़ो, बाबा कहते हैं। बस इतना सा चेक करना है ये बाप की मत है या नहीं, नहीं है तो छोड़ देना है। बच्चे किसी भी बात के लिए जब भी ऑप्शंस देते हैं, किसी भी बात के लिए, किसी भी कार्य के लिए, सेवा के लिए, बस इतना सा चेक करें ये मत बाप की है या नहीं, नहीं तो छोड़ देनी है तो करनी है। सिंपल सी बात है, बाबा कहते हैं जो बाप की मत नहीं है उसमें नहीं जाना है, जो बाप की मत है उसी पर चलना है। किसकी है उसमें नहीं जाना है, वेद शास्त्रों की है या गुरुओं की है, तुम्हारे लौकिक पढ़ाई की है या अभी के विज्ञान से जो साधन बने उन साधनों से आई हुई मत है, उसमें नहीं जाना है। एक दूसरे से आई हुई मत है, नहीं उसमें नहीं जाना है। बस बाप की है तो करना है, नहीं है तो छोड़ देना है। सिंपल रास्ता है, बाबा कहते हैं बिल्कुल कोई मेहनत नहीं है। जब भी मन में कोई मत आए, बस अपने से यही सवाल पूछना है बाप की तरफ से, ड्रामा की तरफ से, कि यह मत बाप की है या नहीं है। बड़े प्रेम से पूछना है, बड़े नम्रता से पूछना है, बड़े स्नेह से। बस सिंपल सी बात है, बाबा कहते हैं जब भी तुम किसी को सलाह दो, लौकिक अलौकिक पारलौकिक, तुम्हारे मुख से कोई शब्द निकले, बस सिंपल बात है, बाबा कहते चेक करो उन शब्दों को निकालने से पहले कि ये बाप के बोल है या नहीं है। नहीं है तो नहीं निकालने हैं, और है तो जरूर देने हैं, बाप दे देगा। बाप है या नहीं है, बस श्रीमत पर चलना आसान होगा। कोई भी बात, कुछ भी खाने का मन हुआ, बस चेक करो यह खाना बाप की श्रीमत है या नहीं है। कुछ भी पहनने का मत हुआ, मन हुआ, ये बाप की श्रीमत है पहनना या नहीं है। कुछ भी करने का मन हुआ, ये करना बाप की मत है या नहीं है। कितना आसान है संगम का जीवन। ऐसे बैठना है, इस प्रकार से बैठना बाप की श्रीमत है या नहीं है। ऐसे चलना है, बस चेक करना है हर बात में। और जब भी दूसरे भी आपको पूछे और मुख से कुछ निकलने वाला है, बस इतना सा चेक करना है उनको बोलने से पहले कि अभी जो हम बोलने जा रहे हैं ये बाप की मत है या नहीं है। नहीं है तो चुप रहना है, और है तो बाबा कहते बोल देना है, ड्रामा हो तो। सिंपल सी बात है, कोई मेहनत नहीं है श्रीमत पर चलने के लिए, कोई मेहनत नहीं। बच्चे भी एक दूसरे को बताते चले कर्मों में कि ये जो आप कर रहे हो ये बाप की मत है या नहीं है, एक दूसरे को याद दिलाते चले। कोई किस तरीके से मुरली पढ़ रहा है, सुन रहा है, उन्हें पूछना ये बाप की मत है या नहीं है। बहुत आसान है, बाबा कहते हैं चलना बहुत आसान है, बस इतना सा शब्द सदा ध्यान में रखना। तुम जो करो वो बाप की मत है या नहीं है। देखना है, हर किसी को अपने घर में अपने स्थान में लिख के रखना चाहिए। हम जो कुछ कर रहे हैं वो बाप की मत है या नहीं है। अपने आप श्रीमत याद आएगी। जो कुछ बाप ने तो हर बात के लिए मत दी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बच्चे देखें करें। इसलिए एडवाइस देना भी बंद हो जाएगा, ऑप्शन निकलने भी बंद हो जाएंगे। निकले तो भी आपको पूछना है सामने वाले को कि अभी जो आपसे ऑप्शन आया ये बाप की मत है या नहीं है, ये बाप की श्रीमत है या नहीं है। आपने कहा ऐसे करते हैं तो ये बाप की श्रीमत है या नहीं है, बस इतना सा पूछना है उन्हें। तुरंत आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। हर बात में श्रीमत को आगे रखो। श्रीमत आगे है तो पहले श्री है, फिर श्री की मत है, और श्री और श्री की मत है तो सदा कल्याण है, सदा कल्याण है, मौज ही मौज है, खुशी ही खुशी है। हर बात में एक दूसरे को पूछना है। जैसे बच्चे अभी मौज करते हैं हर बात में एक दूसरे को कह के, कुछ भी घटना हो बच्चे कहते हैं ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, कुछ भी घटना हो उसमें बच्चे एक दूसरे को कहते हैं ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। उसी प्रकार जो भी घटना घटित हो रही है या किसी के द्वारा की जा रही है, कराई जा रही है, बस पूछना है ये बाप की मत है या नहीं है। ज्ञान पूरा हो गया। हर घटना में पूछना है, जो घटना आपको लगती है कि ये मनमत हो सकती है, ये परमत हो सकती है, उस हर घटना में पूछना है कि बाप की मत है या नहीं है। ये बड़ा मजा आएगा आपको। तो बाप ही सुंदर फूलों का बगीचा बनाता है, यह जादूगरी है बाप की। पतित मनुष्यों को पावन बनाना यह सबसे बड़ी जादूगरी है। इससे बड़ी जादूगरी कुछ नहीं है कि जो पतित मनुष्य है वो पावन हो जाता है। कभी किसी ने सोचा है? जैसे एक मूर्तिकार की जादूगरी होती है, वो पत्थर की मूर्ति बना देता है। बना पत्थर था जिसे कोई देखता नहीं था, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, इसलिए मूर्ति या पत्थर की बनी जाती है, क्योंकि पत्थर की कोई कीमत नहीं होती ना। पत्थर तो ऐसे ही पड़ा हुआ मिल जाता है इधर उधर, तो शून्य से वो अनंत बना मूर्ति। उसी प्रकार पतित मनुष्यों को बाप पावन बनाता है, यही सबसे बड़ी जादूगरी है बाप की। इस जादूगरी से बढ़कर कोई जादूगरी नहीं है। बाप ही सबसे बड़ा सोशल वर्कर है, जो इस पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सारी दुनिया को पावन बनाता है। और बाप के संग वो जादूगर बच्चे हैं जो दुनिया बदलते हैं। ये सारा मैजिशियंस का झुंड है जो दुनिया बदलने वाले हैं। बाबा के सारे मैजिकल डायमंड्स हैं जो दुनिया बदलेंगे। इनका ये संगठन है जो दुनिया बदलेगा। समझ की बात है, दुनिया बदलने के लिए बाप ने चुना है इन डायमंड्स को। किसी डायमंड की ऊर्जा होती है जो किसी आत्मा को लाभ देता है पहनने के बाद, किसी डायमंड की ऊर्जा होती कि किसी पूरे घर को लाभ देता है उस डायमंड को घर में रखने के बाद। और कोई ऐसे डायमंड्स होते हैं जो गुप्त होते हैं, जो पूरी दुनिया बदल देते हैं। समझ की बातें हैं। तो बाप पतित दुनिया को पावन बनाता है बच्चों को साथ लेकर। बच्चे मददगार बनते हैं पावन बनाने में। ऐसे बाप कार्य करता है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। बाबा गीत बदलेगा और कहेगा, कल हंसे थे, आज हंसे हो, कल भी हंस देना। बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने अपने लिए गीत सुना, गीत लगा दीजिए। तो बाबा कहते हैं, लंबे हैं जीवन के रास्ते, आओ चलो गाते हंसते। गीत में है ना, बचपन के दिन भुला न देना। बच्चों के लिए गीत बने हैं, बस बच्चे चलते रहे। बाप के संग चलते जितना रास्ता लंबा होता है उतना आनंद है। जिसने बाप को समझा है वो नहीं चाहेगा कि रास्ता छोटा हो जाए, वो नहीं चाहेगा कि सतयुग आ जाए, वो नहीं चाहेगा कि ये साथ छूट जाए। यही लगेगा कि यही चलता रहे, अनंत कालों तक यही चलता रहे। पर ड्रामा नहीं है, पर भावना ऐसे ही चलेगी कि बस ऐसे ही चलते रहे। ये कभी बदले नहीं, उनकी भावना होगी, संकल्प होगा, क्योंकि बाप के साथ चल रहे हैं ना। बच्चों ने अपने लिए गीत सुना, तुम हो मात पिता के क्षीर यानी मीठे बच्चे। बाप क्षीर बच्चों को कहते हैं कि मम्मा बाबा कहकर कल भूल न जाना, अगर भूले तो वर्षा गवा देंगे। परंतु बच्चे सुनते हुए भी भूल जाते हैं तो भी बाप सहज रास्ता बताते हैं। घर बार गृहस्थ व्यवहार आदि कुछ भी छुड़ाते नहीं हैं। कहते हैं, गृहस्थी हो चाहे बैचलर यानी कुमार हो, सिर्फ श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो। ऐसे बाप को कभी भूल न जाओ। बाप उलहना देते हैं कि कोई कोई बच्चे मम्मा बाबा कहकर फिर कभी अपना समाचार भी नहीं देते हैं। बाप से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं फिर उनको भूल जाते हैं, और नरक की जायदाद देने वाले बाप को बहुत खुशी से चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी न आए तो माँ बाप भी मूंझ जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं बीमार है क्या। तो बेहद का बाप भी ऐसे समझते हैं कि पता नहीं बच्चों का क्या हाल है। इंतज़ार होता है ना, वो लौकिक बच्चे तो दुख देने वाले भी निकल पड़ते हैं, तो भी उनसे मोह नहीं जाता। यहाँ फिर वंडर देखो, जिस बाप को कहते हैं तुम मात पिता, सामने भी बैठे हैं, यूँ तो सब बच्चे मुरली द्वारा भी सुनेंगे। बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितने सपूत हैं कितने कपूत हैं। बाबा मम्मा कहकर फिर भी छोड़ देते हैं। गीत भी कहता है, ऐसे बाप को क्यों भूल जाते हो, ऐसे बाप को रोज़ चिट्ठी लिखनी चाहिए। बाप भी रोज़ खजाना देते हैं, रोज़ पढ़ाते भी हैं, प्यार भी देते हैं। बाप टीचर सतगुरु तीनों ही हैं। लौकिक बाप को तो बच्चे चिट्ठी लिखते हैं, गुरु को भी याद करते हैं, परंतु जो सदा सुख देने वाला सचखंड का मालिक बनाने वाला बाप है उनको भूल जाते हैं, चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाप को फिक्र रहता है कि क्या हुआ, माया ने मार डाला वा विकार में ढकेल दिया। बाबा तो मुरली में ही बच्चों को सावधान करेंगे ना, बाबा राय देंगे कि ऐसे ऐसे अपने को बचाते रहो, क्योंकि यह है बाप का सबसे बड़ा बच्चा, सबसे आगे चल रहा है। इनके पास सब प्रकार के तूफान आदि आते हैं। महावीर हनुमान इनको ही कहेंगे। आगे रुस्तम होने के कारण माया भी रुस्तम हो पहले इनसे ही लड़ेगी। बाबा कहते हैं, तुमको जो तूफान आते हैं वह पहले मुझे आएंगे, जो बाबा अनुभव भी बताते हैं। तुम कहेंगे, बाबा आपको तूफान कैसे आएंगे, आप तो बुजुर्ग हो। बाबा कहते हैं, हमारे पास सब आते हैं, नहीं तो हम तुमको सावधान कैसे करें। परंतु बच्चे बाबा को बताते ही नहीं हैं, तूफान में गुटखा खाकर डूब मर जाते हैं, अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, एक दो को याद दिलाते रहो, बाबा को पत्र तो लिखो, हर बात में एक दो को सावधान करो। माया बड़ी तीखी है, घुसा मार देती है। तुम बच्चे सारी दुनिया के सच्चे सोशल वर्कर्स हो, वह हद के सोशल वर्कर हद की सेवा करते हैं। यह बाप तो सारी दुनिया का सोशल वर्कर है, सारी पतित दुनिया को पावन बनाना यह बाप के ऊपर है। बाप को ही बुलाते हैं, ऐसे बाप को बाप कहें फिर बच्चे भूल जाते हैं। यह गीत भी कोई का टच किया हुआ है, जैसे कोई कोई शास्त्र भी अच्छे बने हुए हैं जो मनुष्य अपने पास रखते हैं। यहाँ तो शास्त्र चित्र आदि कुछ भी नहीं है, यह चित्र भी अपने ही बनाए हुए हैं। वह सब चित्र है संशय बुद्धि बनाने वाले, यह चित्र है निश्चय बुद्धि बनाने वाले। दुनिया को तो यह मालूम ही नहीं कि भारत स्वर्ग था, भारत का कितना मान है। यहाँ ही शिव बाबा आते हैं, शिव को बाबा कहते हैं, फिर है ब्रह्मा बाबा। विष्णु को बाबा नहीं कहेंगे, यह भी तुम बच्चे जानते हो। दुनिया के मनुष्य तो कहते हैं, हे पतित पावन आओ, हम पतित हैं आकर पावन बनाओ, परंतु यह नहीं जानते कि वह पतित से पावन कैसे बनाएंगे, कहा ले जाएंगे, बस तोते के मुआफिक बोलते हैं, बिगर अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अरे गॉड फादर कहते हो, फादर मना प्रॉपर्टी, और किसको फादर नहीं कहा जाता? विष्णु और शंकर को भी फादर नहीं कह सकते, तो और किसी को कैसे कहेंगे? सब समझते हैं कि गॉड फादर निराकार ही है। आत्मा इस देह में आकर पुकारती है, ओ गॉड फादर। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। तुम बाप को कहते हो, बाबा हमको पावन बनाओ और पावन दुनिया में ले चलो। शिव बाबा आते हैं भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाने। बाप कहते हैं, तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले पावन थे, तुम ही चाहते हो हम पावन बने। स्वर्ग को याद करते हो, वैकुंठ कहने से श्री कृष्ण याद आता है। यह नहीं समझते कि प्रवृत्ति मार्ग के महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण को याद करें। अब मनुष्य चाहते हैं शांति, यह सारी दुनिया का क्वेश्चन है, उसकी जवाबदारी बाप के ऊपर है। जब भारत नरक हो जाता है तो उसको स्वर्ग बनाने बाप ही आते हैं। नरक फिर कौन बनाते, कब बनाते हैं, यह कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको स्वर्गवासी बनाता हूँ, स्वीट वर्ल्ड में ले जाए, फिर तुमको स्वीट बादशाही में भेज देंगे। ऐसे बाप से तो रात दिन पढ़कर पूरा वर्षा लेना चाहिए। वास्तव में रात दिन कोई पढ़ाया नहीं जाता है। बाबा कहते हैं, सवेरे और रात को एक घंटा रेगुलर पढ़ो। सवेरे का समय तो सबको मिलता है, एक सेकंड की बात है, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करना है। फिर भी तुम भूल जाते हो, फिर कहते हो बाबा हम क्या करें। याद भी बड़ी सहज है, सृष्टि चक्र का ज्ञान भी बड़ा सहज है। यह है पाप आत्माओं की दुनिया, तुमको पुण्य की दुनिया में जाना है। शिव बाबा को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए भी बहुत सहज है, तो बाप बच्चों को जरूर याद करते हैं। फलाने की कभी चिट्ठी नहीं आती है, क्या हो गया है, वा जब सामने आते हैं तो पूछता हूँ, क्या बेहोश तो नहीं हो गए थे? बाप के साथ इतना लव नहीं, पाई पैसा कमाने वाले में लव चला जाता है। बाबा को समाचार देना चाहिए, बाबा हम जीते हैं, खुश हैं, औरों को भी परिचय देते रहते हैं। बाबा तो रोज मुरली में याद प्यार भेजते हैं, बाकी एक एक का नाम तो नहीं लिख सकते हैं, तो बच्चों को भी अपना समाचार देना चाहिए। इस समय सारी दुनिया का मुँह काला हो गया है, उनको बाबा आकर गोरा बनाते हैं। बाबा भारत का मुँह फेर देते हैं, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। कैसा जादूगर है, स्वर्ग के बगीचे में भारत ही होता है। वह यह पता नहीं रहता कि हमारे पीछे और कौन कौन आने वाले हैं, समझते हैं बस हम ही विश्व के मालिक हैं। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फिर जंगल कोई गॉड नहीं बनाते, वह तो रावण बनाते हैं। रावण पुराना दुश्मन है जिसको कोई नहीं जानते हैं। बाबा पूछते हैं तुम किसकी संतान हो, बाबा हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा के पोतरे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम बाबा के बच्चे बने ही हो वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते हैं याद रखना, भूलना नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अरे तुमको जो नर्कवासी बनाते हैं उनको याद करते हो, और स्वर्गवासी बनाने वाले बाप को भूल जाते हो। बाप को नहीं भूलेंगे तो वर्षे को भी नहीं भूलेंगे। इस समय तो बाबा हाजिर नाजिर हैं, कहते भी हैं हाजिरा हजूर, वह भी गुप्त है। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनको देखते हैं। आत्मा गुप्त तो बाप भी गुप्त। आत्मा शरीर में आकर बोलती है मुझे भी शरीर चाहिए, नहीं तो आऊँ कैसे। गर्भ में आऊँ तो गर्भ जेल में आना पड़े, मैं गर्भ जेल में क्यों आऊँ। मैंने कौन सा गुनाह किया है। गर्भ महल तो होता है स्वर्ग में, हम स्वर्ग में आकर क्या करेंगे। स्वर्ग का मालिक तो तुम बच्चों को ही बनाता हूँ। यह सम्मुख बैठकर सुनने से सबको मज़ा आता है, यहाँ से बाहर जाने से सब कुछ भूल जाते हैं। 21 जन्मों की राजाई लेना और साधारण प्रजा में पद पाना फर्क तो बहुत है ना। भील लोग रोटला खाते हैं, साहूकार माल खाते हैं। फर्क है मर्तबे का, परंतु दुखी तो दोनों ही होते हैं। स्वर्ग में फिर सब सुखी होते हैं, परंतु मर्तबा नंबरवार है। हमको पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। इस समय श्रीमत मिलती है तो मात पिता को फॉलो करना पड़े। मात पिता तो साकार में चाहिए, शिव बाबा को तो पुरुषार्थ करना नहीं है। मम्मा बाबा पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेते हैं। फिर जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह गद्दी पर बैठते हैं। 8 पास विद ऑनर होते हैं, उनमें आना चाहिए। उनमें नहीं तो 108 में आओ। मार्जिन तो 16108 की भी है। 16108 की बहुत बड़ी माला होती है, उनको बैठ खींचते हैं। यह माला जपने की बात नहीं है। बाप तो कहते हैं फॉलो करो, यह ब्रह्मा बूढ़ा पढ़कर पास हो नंबर 1 में जाता है। मम्मा जवान भी नंबर 1 में जाती है, तो तुम पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो, गफलत क्यों करते हो। बाप को पत्र भी नहीं लिखते, याद भी नहीं करते हैं, प्रण भी कर जाते हैं परंतु बाहर गए खलास। हम कह भी देते हैं तुम बाहर जाने से भूल जाएंगे, कहते हैं बाबा हम नहीं भूलेंगे, फिर भूल जाते हैं। वंडर है ना, यह है बिल्कुल नई पढ़ाई जो कोई शास्त्र में नहीं है, कोई समझ नहीं सकते, अब बाबा ने दृष्टि दी है। इस अंतिम जन्म में बाबा सुनाते हैं, हम गीता भी पढ़ते थे, नारायण का भी पूजन करते थे, गद्दी पर भी नारायण का चित्र रखते थे। हिस्ट्री सुनाना, लक्ष्मी को कैसे मुक्त कर दिया? दुनिया वालों से बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। तुम भी गुप्त रीति बाबा का परिचय देते रहो कि बाप और वर्षे को याद करो। स्वर्ग के हैं देवी देवता, इसलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया है। पहले त्रिमूर्ति नहीं डाला था क्योंकि ब्रह्मा को देख बिगड़ जाते हैं, परंतु ब्रह्मा बिगड़ काम कैसे हो? बी के बाप को नहीं देखेंगे तो काम कैसे होगा? बाप कहते हैं, गीता में लिखा हुआ है, मन मना भव मध्याजी भव, चाहे मुक्ति का व जीवन मुक्ति का, दोनों वर्षा मैं दे सकता हूँ और कोई नहीं। बहुत समझने की बातें हैं। अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करना है जरूर। दिन में भल काम करो, परंतु अमृत वेले 4 बजे से 5 बजे तक बैठकर याद करो तो बहुत सुख फील होगा। बाबा स्वीट होम से हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं, फिर चले जाते हैं। कहते हैं, मुझे याद करो तो खाद निकलेगी, जब सच्चा सोना बन जाएंगे तब पास विद ऑनर होंगे। अगर ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता है? बाप फिर कहते हैं, इस ईश्वरीय बचपन को नहीं भूलना, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए, याद से तुम कंचन बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। 1-2 को सावधान कर बाप की याद दिलाए, उन्नति को पाना है। अपने ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं है। 2 नंबर, मात पिता को फॉलो करते रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। अमृत वेले बाप की याद में बैठकर सुख का अनुभव करना है। वरदान है दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ और पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना ही है, दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो, तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएगी। बाबा कहते हैं ऐसा संगठन बनाओ जिनके संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाए, सिद्धि स्वरूप बनो, प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन बनाओ। इसके लिए क्या करना है? दृढ़ता संपन्न बनना है, दृढ़ता की शक्ति को धारण करना है, फिर प्रयोगशाली बनना है। जहाँ दृढ़ता है उस दृढ़ता की शक्ति को लेकर जब भी कोई संकल्प उठाते हैं, त्रिकालदर्शी पने की अवस्था में रहकर कोई भी संकल्प उठाते हैं तब वह संकल्प सिद्ध हो ही जाता है। इसके लिए पहले दृढ़ता को पक्का करो, दृढ़ता की शक्ति पक्की हो। तुम बच्चे कभी कभी वचन बोल देते हो कि ऐसे करना है वैसे करना है, और तुम ही अपने वचनों को फेर देते हो, बदल देते हो। बाबा कहते दृढ़ता पता चलती है कितनी है वचनों से। तुम कभी कभी वचन देते हो और करते नहीं हो, इसका अर्थ है तुम्हारे अंदर दृढ़ता नहीं है। तो दृढ़ता को बढ़ाओ, तुम्हारे वचन कभी गिरेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, तुम जो बोलोगे वही होगा, सिद्धि स्वरूप बनोगे। पर दृढ़ता चाहिए, इसके लिए दृढ़ता से संपन्न बनो। और फिर जब ऐसे सिद्धि स्वरूप प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन तैयार होगा तो उससे बहुत कार्य होंगे। ऐसे डायमंड्स बहुत कार्य करेंगे, पर बाबा कहते बनना है पहले। स्लोगन है सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। देखिए संतुष्ट रहना चाहते हो तो सबकी दुआएं लेते चलो, दुआओं से संतुष्ट रहोगे। तुम अपने से संतुष्ट नहीं रह सकते, जब तुम्हारे पास दुआएं हैं तो ही तुम संतुष्ट रह सकते हो। दुआएं नहीं तो संतुष्ट नहीं रह सकते। कोई अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं रह सकता। जब दूसरों की दुआएं मिलती हैं उसी से संतुष्ट बनेंगे। किसी के लिए एक गिलास पानी दिया तो उससे जो थैंक यू निकलता है वो दुआएं हैं, वही तुम्हें संतुष्ट रख सकता है। ऐसे नहीं कि बस अपना लिया और अपना खाया, बाबा कहते नहीं, अपना पिया नहीं, कभी मददगार बनो दुनिया के। संतुष्टता सेवा से आती है, इसलिए सेवा करने के बाद खुशी होती है दूसरों की, क्योंकि संतुष्टता मिलती है। जो सेवा करना नहीं जानते वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकते, वो असंतुष्ट ही रहेंगे। सेवा से ही संतुष्टि आती है, और सेवा दूसरों के लिए होती है। खुद के लिए जो किया जाता है उसे सेवा नहीं कहते। स्वयं के लिए चाय बनाई सुबह उठकर तो वो सेवा नहीं है, दूसरों के लिए बनाई तो सेवा है। सेवा किसे कहा जाता है? जिसमें से लाभ तुम नहीं लेते हो, लेंगे तो 0.1%, 1%, बाकी सारा लाभ दूसरों को दिया जाता है, उसी को सेवा कहा जाता है। समझ की बात है। और उसी से तुम संतुष्ट मणि बनोगे, तो जितनी सेवा करोगे उतने संतुष्ट मणि बनोगे। ध्यान देना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति।
वाहे मेरा आत्मा, वाहे मेरा भाग्य, वाहे शुक्रिया।
ओम शांति।